3 नवंबर दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। बिहार में पांचवें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन।
2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। किसी को रोजगार मिला जी? कहीं नहीं मिला। नया रोजगार तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार की नौकरियों को भी सीमित कर दिए।
देखेंगे किस तरह छत्तीसगढ़ में बंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं धान की फसल को।
सूखा और अकाल के कारण जो ताज़ा हालात बने हैं उसमें बंदर अब अगर धान खाने लगे हैं तो इसे बंदरों के स्वभाव में आए एक परिवर्तन की तरफ देखा जाना चाहिए।
होंगे खेल समाचार भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 9 जिलों की 57 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इन सीटों में भाजपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल 20, जनता दल यूनाइटेड 25, कांग्रेस 12 और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 5 नवम्बर को मतदान होना है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया में हर 10 मिनट में पैदा होने वाले एक बच्चे के पास किसी देश की नागरिकता नहीं होती और सीरिया के संघर्ष ने इस संकट को बढ़ा दिया है। शरणार्थी मामले की संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि बिना नागरिकता के ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल पैदा होने वाले करीब 70,000 बच्चों को किसी देश का नागरिक नहीं माना जाता। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के लियो डॉब्स ने बीबीसी को बताया।
They may have fled in great hurry from their homes and left.
ये लोग जल्दबाजी में घर छोड़कर भागते हैं और अपने दस्तावेज भी घर पर ही छोड़कर आ रहे हो सकते हैं। सीरिया में उन 27 देशों में से एक है जहां मां की नागरिकता स्वाभाविक रूप से बच्चे को नहीं मिलती। शरणार्थियों के परिवारों में से 1/4 परिवारों के पास कोई नागरिकता नहीं है, बच्चों के पिता नहीं है जो उनकी नागरिकता की पुष्टि कर सकें। ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने उभर कर आ रहा है। ये थे लियो डॉब्स, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दिल्ली में 30,000 कोर्ट ने ऊबर टैक्सी में हुए बलात्कार के दोषी शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित महिला पिछले साल 5 दिसंबर को ऊबर टैक्सी से गुड़गांव से दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी जब टैक्सी चालक ने उनके साथ बलात्कार किया था। शिव कुमार यादव को पुलिस ने 7 दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया था। अदालत ने ड्राइवर शिव कुमार यादव को अपहरण, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। इजरायली सेना ने पश्चिमी तट में एक फलस्तीनी रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया है। सेना का कहना है कि रेडियो स्टेशन हिंसा भड़का रहा था। सेना के मुताबिक हेब्रोन का अल हुरिया रेडियो स्टेशन फलस्तीनियों को चाकू से हमला करने के लिए उकसाता रहा है। रेडियो स्टेशन के अधिकारियों ने कहा है कि इजरायली सैनिकों ने रेडियो स्टेशन में तोड़फोड़ की है और सामान कब्जे में ले लिया है। पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी हिंसक घटनाओं में 11 इसराइलियों और 60 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो गई है। म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन ने लोगों को आम चुनाव में आंग सान सू की विपक्षी पार्टी के पक्ष में वोट करने से चेताया है। आम चुनाव के 6 दिन पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा कि राजनीतिक सुधारों के लिए बहुत जल्द करना ठीक नहीं होगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया। कल से चुनाव प्रचार में लगे 20 हेलीकॉप्टर्स ने भी आज अंतिम बार उड़ान भरी। अंतिम चरण में गुरुवार 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 57 सीटों पर 800 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण में महागठबंधन और एनडीए के सामने क्या है चुनौती और किन नेताओं का होगा लिटमस टेस्ट, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार के चुनावी रण के अंतिम चरण में मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के 9 जिलों के 57 सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इन जिलों के अंतर्गत कुल 9 लोकसभा सीटें आती हैं। 2014 के आम चुनाव में राजद जदयू के अलग अलग चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा को इन 9 में से केवल 3 पर ही जीत मिली थी। ऐसे में अब राजद, जदयू, कांग्रेस के महागठबंधन के कारण भाजपा के लिए चुनौती और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि ऐसे में भाजपा या कहें कि एनडीए के प्रदर्शन का बड़ा दारोमदार नरेंद्र मोदी के जादू पर रहेगा। महत्वपूर्ण दलों में भाजपा ही सबसे ज्यादा 38 सीटों पर मैदान में भी है, जबकि जदयू 25, राजद 20, कांग्रेस 12 और लोजपा 11 सीटों पर मुकाबले में है। लेकिन कठिन चुनौती के बावजूद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने आज एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया।
नीतीश कुमार चुनाव हार चुके, लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके और इन लोगों को जनता ने पराजित कर दिया है और उनके भाग्य की रेखा के अनुसार उनको परिणाम 8 तारीख को मिल जाने वाला है। इसलिए अब लालू जी, नीतीश जी थोड़ा 3 दिन और इंतजार कर ले, 4 दिन, 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, उसके बाद अपनी
महागठबंधन की बात करें तो 2014 के आम चुनाव के मुकाबले उसके लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। ऐसा 3 नेताओं के कारण माना जा रहा है। तब सांसद पप्पू यादव और तारिक अनवर राजद के साथ थे, लेकिन अब ये दोनों महागठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही इस बार मुस्लिम बहुल सीमांचल की 6 सीटों पर ऑल इंडिया MIM भी मैदान में है। इन चुनौतियों के बीच नीतीश कुमार ने आज अपनी सभी सभाएं दरभंगा जिले में की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया।
मोदी जी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, हम उसका जवाब दे देते हैं, इसीलिए परेशानी होती है। लोकसभा के चुनाव में तो कितना वादा किए थे, काला धन लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाए, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार मिला जी? कहीं नहीं मिला। नया रोजगार तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार की नौकरियों को भी सीमित कर दिया।
लॉन टेनिस के किसी रोमांचक मैच सा बिहार चुनाव अपने अंतिम 5वें चरण में पहुंच चुका है। हालांकि टेनिस मैच की तरह अब तक साफ साफ ये नहीं पता कि बीते 4 चरणों में बढ़त किस गठबंधन को है। ऐसे में अंतिम चरण एनडीए और महागठबंधन के लिए तो अहम है ही, साथ ही इस चरण में 3 सांसदों असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव और तारिक अनवर भी लिटमस टेस्ट से गुजरेंगे। मनीष शांडिल, BBC पटना।
बिहार में अभी तक हुए मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को महागठबंधन अपनी जीत बता रहा है, तो एनडीए का भी अपना दावा है। लेकिन जानकार मानते हैं कि लड़कियों को साइकिल देने की योजना का कुछ सकारात्मक असर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नीतीश अकेले इसका श्रेय नहीं ले सकते। दूसरी ओर साइकिल मिलने से आत्मविश्वास से भरपूर लड़कियां नीतीश कुमार को इसका श्रेय देती हैं। पंकज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव में क्या महिलाओं की बढ़ती भागीदारी कोई संकेत है? दोनों प्रमुख गठबंधन ये दावा कर रहे हैं कि महिलाएं उनके पक्ष में मतदान कर रही हैं। इसके पीछे की सच्चाई तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार की बहुचर्चित साइकिल योजना ने बिहार की फिजा को नई ऊर्जा दी है। लड़कियों में गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलता है और साथ ही उनमें उत्साह भी बढ़ा है। वे अपने को लड़कों के समकक्ष समझने लगी हैं। बिहार के कई हिस्सों से गुजरते हुए आप ग्रुप में साइकिल सवार लड़कियों को देखकर समझ सकते हैं कि वे खुले माहौल में सांस लेकर कितनी खुश हैं। पटना जिले के कई गांव के अलावा सुदूर चंपारण के भी कुछ इलाकों में मुझे इन स्कूली छात्राओं से मिलने का अनुभव हुआ। कुछ तकनीकी खामियों को छोड़कर सभी ने इस योजना की तारीफ ही की। साइकिल के लिए पैसे दिए जाने और उसके दुरुपयोग को लेकर जरूर सवाल उठे। साथ ही ऐसे भी मामले आए जिसमें साइकिल के लिए पैसे तो लिए गए लेकिन साइकिल खरीदी ही नहीं गई। तो कई मामलों में बड़ी बहन की शादी हो जाने के बाद उसकी छोटी बहन अब साइकिल चला रही है। लेकिन इन सब के बावजूद स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है। रक्सौल की रोशनी कहती हैं कि साइकिल मिलने से बहुत फायदा हुआ है।
क्या नाम है तुम्हारा?
रोशनी कुमारी।
कब मिली थी साइकिल तुमको?
6 महीना पहले।
अच्छा, ये बताओ कि क्या फायदा हुआ है तुम लोगों को साइकिल मिलने से?
जल्दी भी स्कूल पहुंच जाते हैं लोग, लेट नहीं होता है, मतलब सर डॉक्टर रहे थे।
पढ़ाई में क्या फायदा हुआ है?
पढ़ाई ठीक होता है जी।
अच्छा, कौन दिया ये पता है तुमको साइकिल?
जी, नीतीश कुमार।
पटना जिले के निजामपुर गांव की अंजनी कुमारी को 2 साल पहले साइकिल मिली थी। उनका कहना है कि साइकिल मिलने के बाद उन्हें ये लगने लगा है कि वे भी अब लड़कों से कम नहीं हैं।
साइकिल हम सब पहले देख रहे थे कि लड़का लोग चलाता है, तो हम सबको भी बहुत मन करा था कि हम सब भी साइकिल चलाए। जब से हम सबको साइकिल मिला तो हम सब सोचने लगे कि हम सब भी लड़के लोग से कम नहीं है, और पढ़ाई में भी ज्यादा हम सबको हाँ दूर तक जा सकते हैं।
पटना के पास एक गांव अधपा की रहने वाली जूली कहती हैं कि पहले अच्छी पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन साइकिल मिलने से अब वो परेशानी कम हो गई है।
जैसा कि पढ़ाई का बात है, तो पहले सोचना पड़ता था कि गांव में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है गाँव से बाहर, तो लड़कों लोग का तो प्रॉब्लम नहीं होता, वो लोग साइकिल से चले जाते हैं। बाकी रहा लड़कियों का बात, वो तो लड़कियां भी जाती है, पर कुछ गांव वाले बोलते भी है कि लड़की होकर साइकिल से मतलब कैसे जाएगी, कुछ हो जाएगा।
नीतीश कुमार की साइकिल योजना की तारीफ करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती इसे मतदान में महिलाओं की बढ़ती संख्या से जोड़कर देखती हैं।
कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के और खास करके नीतीश जी ने जो आरक्षण देने का काम किया, जो लड़कियों को पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, एक तरफ से शिक्षा की तरफ खींचने का काम किया, तो कहीं ना कहीं ये उनके प्रति और महागठबंधन के प्रति वो अपना वोट निकल करके दे रही हैं।
लेकिन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नीतीश कुमार अकेले इस योजना का श्रेय नहीं ले सकते, क्योंकि जिस समय ये योजना लागू की गई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी। बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल पांडे,
यह जो साइकिल योजना आई थी यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए आई थी, और बालिकाओं को शिक्षित करना, बालिकाओं को समाज में आगे लाने की यह योजना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार ने लागू किया था। यह नीतीश कुमार श्रेय नहीं ले सकते, ना उनको श्रेय जा रहा है।
साइकिल मिलने के बाद कई माता पिता अपनी लड़कियों में बदलाव महसूस कर रहे हैं और उन्हें ये बदलाव भा भी रहा है। रक्सौल की रोशनी के पिता भुनेश शाह कहते हैं कि अब सब काम समय पर होने लगा है।
जब से साइकिल मिला है तो हमको 10-10 रुपए भाड़ा देना होता है, 10-10 रुपए बच जाता है। साइकिल में कभी 10-20 का खराबी होता तो लगा देते हैं। आप पहले से बहुत अच्छा पढ़ाई है, जब से नीतीश का सरकार हुआ है लड़कियों लोग के बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। पहले बहुत ज़्यादा छेड़खानी उड़खानी इधर उधर होता था, अब वो छेड़खानी नहीं हो रहा है।
लेकिन बात सिर्फ साइकिल देने की नहीं है, कई माता पिता ये भी सवाल उठाते हैं कि साइकिल तो ठीक है लेकिन जब तक शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी इसका कोई फायदा नहीं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह मानते हैं कि कुछ खामी हो सकती है, लेकिन सरकार का पहला मकसद सफल हुआ है और दूसरे चरण में ध्यान शिक्षा व्यवस्था पर दिया जाएगा।
सबसे पहले गवर्नमेंट कोई भी हो, उसको साइकिल या मोटरसाइकिल देने से उसको वोट नहीं मिलेगा। सबसे पहले बच्चा को सुधार करना है तो उसको विद्यालय पर कंट्रोल करना है। विद्यालय अगर सही रहेगा तब बच्चा को भविष्य आगे में आ जाएगा।
लड़कियों की स्कूलों में बढ़ती भागीदारी के बीच उनमें राजनीतिक रूप से जागरूकता भी देखी जा सकती है। कई लड़कियां एक सुर में कहती हैं कि उनकी जिंदगी में आए इस सकारात्मक बदलाव की वजह नीतीश कुमार है।
कौन सी सरकार ने साइकिल दिलाई है तुम लोग?
नीतीश कुमार।
कई लड़कियां ये भी कहती हैं कि जब उन्हें मत देने का अधिकार मिलेगा तो वे नीतीश कुमार को ही वोट देंगी। खैर वो तो आगे की बात है, फिलहाल ये देखना रोचक होगा कि मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बीच नीतीश की उम्मीदों को कितनी गति मिलती है। पंकज प्रियदर्शी, BBC पटना।
उबर टैक्सी बलात्कार मामले में ड्राइवर शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने बीते 20 अक्टूबर को गुड़गांव की एक वित्त कंपनी में काम करने वाली लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में उन्हें दोषी ठहराया था। मैंने BBC संवाददाता सलमान रवि से इस फैसले का विवरण मांगा।
देखिए, ये अदालत है अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत, जिसने 20 तारीख को ही दोषी पा लिया था। पूरी सुनवाई करने के बाद जो अभियुक्त है उबेर कैब के ड्राइवर को, शिव कुमार यादव, और उसके बाद आज का दिन तय किया गया था कि सज़ा का क्वांटम यानी कि कितनी सज़ा दी जाए। तो जो नए संशोधन हुए हैं कानून में उसके हिसाब से बलात्कार के मामले में जो उम्र कैद की सज़ा का जो प्रावधान किया गया है उसका मतलब होता है कि जब तक वो जीवित रहे तब तक जेल में रहे। तो ये आज सज़ा सुनाई गई और इससे पहले जो है 99 पेज का जजमेंट तैयार कर लिया गया था जो 20 अक्टूबर को ही जज ने पास कर दिया था। और उसमें ख़ास तौर पर जो भारतीय दंड विधा की IPC की धाराएँ हैं 376 और 506, 366 और 323 इनका अभियुक्त पाया गया था शिव कुमार यादव को।
ये घटना हुई थी दिसंबर में और इस समय है नवंबर, यानी 11 महीने के अंदर ये फैसला आया है, बहुत तेज फैसला सुनाया गया।
जी बिल्कुल, इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कई पेच आ गए थे इस मामले में, क्योंकि जब ये घटना घटी थी आपको जैसे पता है कि 5 दिसंबर की रात को जो ये विक्टिम हैं ये गुड़गांव से अपने ऑफिस से घर जा रही थी, जो इंद्रलोक में उनका घर है, और घर ले जाने की बजाय किसी आइसोलेटेड जगह पर ले जाकर बलात्कार किया गया, और उसके बाद से आरोपी फरार हो गया था और 7 दिसंबर को मथुरा से फिर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। उसी बीच में जनवरी तक कोर्ट ने जो है इसमें चार्जेस फ्रेम कर दिए थे और उसके बाद ट्रायल भी शुरू हो गया था जनवरी के महीने में ही, लेकिन इस बीच में अभियुक्त की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई और उसमें ये कहा गया कि जो 28 प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे उनको दोबारा से री एग्जामिन किया जाए और विक्टिम जो है जो कंप्लेनेंट है उसको भी री एग्जामिन किया जाए। हाई कोर्ट ने हालांकि अनुमति तो दे दी थी, लेकिन सितंबर माह में इस साल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को अलग हटाते हुए कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और फिर से जो है मामले की सुनवाई शुरू हुई और बहुत जल्दी इस पर फैसला आ गया, चूँकि इसमें दिल्ली का जो गैंग रेप वाला मामला हुआ था उसके बाद से ये कहा गया था कि इस तरह के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिए जाए ताकि जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, और उसी कड़ी में ये कोर्ट के फैसले जिसमें डे टू डे बेसिस पर सुनवाई हुई।
ये थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगभग रोज बताते रहे हैं कि अमुक लेखक या कलाकार ने अपना पुरस्कार लौटा दिया है। करीब 50 से ज्यादा बुद्धिजीवी और कलाकार अब तक राष्ट्रीय पुरस्कार लौटा चुके हैं, यहां तक कि वैज्ञानिक और इतिहासकार भी पुरस्कार लौटाने की बात कर रहे हैं। वजह है देश में असहिष्णुता और धर्म आधारित हिंसा की लगातार बढ़ती घटनाएं। लेकिन आज एक फिल्म अभिनेता कमल हासन ने कहा कि पुरस्कार लौटाने का कोई फायदा नहीं। वहीं एक मंत्री ने सवाल किया है कि कहां बढ़ी है ये असहनशीलता। पूरी रिपोर्ट के साथ प्रगति सक्सेना।
अपने जन्मदिन के मौके पर कल भारत के पहले ट्विटर टाउन हॉल में लोगों के सवालों का जवाब देते हुए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने माना कि देश में छोटी छोटी बातों पर असहनशीलता बढ़ी है।
आई थिंक हम थोड़े इंपेशेंट हो गए। मुझे कहीं ना कहीं पर यह भी लगता है कि आवाज ज्यादा होने के बावजूद कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इनटॉलरेंस जरूर है।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2015 की घोषणा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये धार्मिक असहनशीलता कहाँ है। उन्होंने कहा कि देश में हालात शांतिपूर्ण हैं और असहनशीलता की बातें राजनीति से प्रेरित हैं।
तो ये कहना कि इनटॉलरेंस है कहाँ है, केवल बयानबाजी करने से इनटॉलरेंस का एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा, और कभी इस देश की मुख्यधारा के लोगों ने ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं किया।
इससे पहले धार्मिक असहनशीलता पर चिंता व्यक्त करने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिली। आज कांग्रेस ने बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ विरोध मार्च का भी आयोजन किया जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उधर लेखकों और कलाकारों को पुरस्कार वापस करने चाहिए या नहीं, इस बहस को नया मोड़ देते हुए फिल्म अभिनेता कमल हासन ने कहा कि पुरस्कार वापस करने का कोई फायदा नहीं।
इससे कुछ नहीं होता, यू ब्रिंग अटेंशन टू इट, बट देयर आर मेनी मोर वेज ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन। दोस पीपल हु रिटर्न देयर अवार्ड आर कैपेबल ऑफ मेक ब्रिंगिंग।
कमल हासन कह रहे हैं इस तरफ ध्यान खींचें। इस तरफ ध्यान खींचने के बहुत से और तरीके हैं। जिन लोगों ने अपने पुरस्कार लौटाए हैं वे योग्य और समर्थ लोग हैं। उनका लिखा हुआ एक लेख पुरस्कार लौटाने की बनिस्पत कहीं अधिक लोगों का ध्यान खींचेगा। सरकार चाहे इस बात से इनकार करती रहे कि धार्मिक असहनशीलता बढ़ी है, बहस बेशक असहनशीलता और धार्मिक हिंसा को छोड़ इस बात पर जा टिके कि बुद्धिजीवियों और कलाकारों को पुरस्कार लौटाने चाहिए या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि देश के प्रतिष्ठित लोगों के लगातार पुरस्कार लौटाने से सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी के बीच भी इस मुद्दे को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।
प्रगति सक्सेना की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर अघोषित ब्लॉकेड की खबरों के बीच आज नेपाल और चीन के अधिकारियों के बीच वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते खोलने के बारे में बात हुई है। मैंने थोड़ी देर पहले काठमांडू फोन कर बीबीसी नेपाली सेवा के महेश आचार्य से बात की और इस मंत्रणा का विवरण मांगा।
ये वार्ता महत्वपूर्ण इसलिए है कि नेपाल और चीन के बीच जो भंसार बिंदु है, दो बिंदु है, एक केरुंग रसुआ बोलते हैं हम, और दूसरी है तातोपानी खासा, और दोनों रूट जो नेपाल के अप्रैल में महाभूकंप गया था उस वक्त दोनों में डैमेज हुआ था, सड़क में भी डैमेज हुआ था और कस्टम पॉइंट में भी डैमेज हुआ था, लेकिन केरुंग कुछ हफ्ते पहले खुला था और उसी मार्ग से चीन के दिए हुए अनुदान के जो पेट्रोल है वो आ रहा है, और ये जो छलफल चीनिया और नेपाली अधिकारी के बीच हो रहा है, इस छलफल जो दूसरे प्रमुख नाका है तातोपानी उसको खोलने के लिए बात हो रही है, क्योंकि तातोपानी नेपाल और चीन के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है।
ये बताइए, अगर ये फैसला हो जाता है, समझौता हो जाता है, तो आपको लगता है कि भारत से जो सप्लाई आ रही थी उसकी भरपाई हो पाएगी चीन की तरफ से आने वाली सप्लाई से?
वो तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो भौगोलिक विकटता है और नेपाल से जो जुड़ी हुई चीनी सीमा है वो पहाड़ी हिमालय भूभाग है वहाँ पर, इसलिए जो दक्षिणी सीमा से जो सामान आपूर्ति होता है भारत से, या किस देश के जो सामान है भारत से जो आती है नेपाल में, उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस किस्म के क्राइसिस नेपाल में सृजना हो रहा है उसको ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी संबोधन करने के लिए सफल होगा, ऐसा मानना है नेपाली अधिकारियों का। जैसे उदाहरण के लिए नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ के, पेट्रोल के, डीजल के, किरोसिन के और कुकिंग गैस के बहुत ज्यादा अभाव है, और नेपाली पक्ष चीनिया पक्ष से व्यापारिक रूप में समझौता करके नेपाल के जो राष्ट्रीय डिमांड है उसके 1/3 चीन से मंगाने के लिए बात कर रहे हैं, योजना आगे बढ़ रही है।
ये बताइए, अभी वहाँ स्थिति क्या है? कुछ ये जो गतिरोध चल रहा है इसके कुछ दूर होने की संभावना आप देखते हैं या ये ऐसे ही चलता रहेगा?
ऐसा है कि पिछले एक दो दिन के अगर आप परिस्थिति देखें तो ये सहमति की संभावना नहीं दिखा रहा है। जैसे कि सोमवार को बीरगंज में जो घटना हुई उसमें एक भारतीय नागरिक भी मारे गए हैं, और उस घटना को लेकर जो प्रदर्शन हुआ है वहाँ पर, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा से वो सीमा नाका बंद था रक्सौल बीरगंज का, और उसमें नेपाल के प्रहरी ने उस खाली करके भारत के जो स्टैंडर्ड ट्रक्स थे, 200 से ज्यादा ट्रक्स थे, उनको सीमा पार भेज दिया। लेकिन नेपाली पक्ष का ये कहना है कि भारतीय पक्ष ने जो ट्रक भारत के साइड में स्टैंडर्ड है वो नेपाल छिड़ाने के लिए, नेपाल लाने के लिए उतना सहयोग नहीं किया। लेकिन ये तो आपूर्ति की बात हो गई। अगर राजनीतिक मसले की बात करते हैं आप, तो वार्ता तो चल रही थी मवेशी मोर्चा और सरकार के बीच, 2-3 दिन पहले जो वार्ता हुआ था उसमें दोनों पक्षों ने कहा था कि वार्ता सकारात्मक दिशा में जा रही है, और सीमांकन जो सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है, जो सबसे बड़ी समस्या की बात है, उसमें छलफल करने के लिए दोनों पक्ष राजी हो गए थे। एक दिन बाद ही जो बीरगंज में घटना हुआ उसके बाद मवेशी मोर्चा कह रहे कि अब वार्ता में बसने के लिए वातावरण नहीं है और वातावरण बनाने के लिए सरकार को कुछ कदम चलना पड़ेगा। इसलिए अब ये दिखाई रहा है कि वार्ता जल्दी होने की कोई संकेत नहीं है।
ये थे काठमांडू से बीबीसी नेपाली सेवा के महेश आचार्य। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इस साल सूखे के हालात हैं। राज्य के 27 में से 20 जिलों की 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन खेतों में जो रही सही धान की फसल है उसे अब बंदर खाने लगे हैं। अभी तक फल, दलहन और तिलहन की फसलें बंदरों के निशाने पर होती थी, लेकिन अब बंदरों का ध्यान किसानों के लिए, धान पर हमला किसानों के लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
दुबर पर दो आषाढ़ कहावत का मतलब समझना हो तो सूखे की मार झेल रहे मुंगेली जिले के अचानकमार गांव के सरपंच गयाराम से इसका अर्थ पूछ लीजिए। इलाके में एक तो सूखा पड़ा था और अब जो भी थोड़ी बहुत धान की फसल बची थी उसे बंदर खाने लगे हैं। बंदरों द्वारा बर्बाद कर दिए गए अपने धान के खेत को दिखाती हुई अचानकमार गांव की फूलबाई मायूस हो जाती हैं।
आसो तो फसल बहुत कम है, चीतल और बरहा पूरा रेड दे हैं।
इस साल तो फसल बहुत कम है, चीतल और जंगली सुअर फसल बर्बाद कर रहे हैं, बंदर भी आ रहे हैं। बंदर हाथों से फसल की बाली निकाल निकाल कर खा रहे हैं। बंदरों ने धान की फसल का क्या हाल कर रखा है देख तो रहे हैं आप, बहुत नुकसान हो गया है। छत्तीसगढ़ में हजारों बंदर अलग अलग गांवों और छोटे शहरों में स्थायी रूप से बस गए हैं। बंदरों द्वारा खपरेल घरों की छतों को तोड़ना और खेती को नुकसान पहुंचाना एक आम बात है। बंदरों के कारण ही राज्य के कई हिस्सों में किसानों ने मूंगफली और दलहन की फसलें उगाना ही बंद कर दिया है, लेकिन अब बंदरों ने छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान को ही खाना शुरू कर दिया है। वन्यजीव विशेषज्ञ मीतू गुप्ता इसे बंदरों के व्यवहार में आए परिवर्तन से जोड़ती हैं।
किसी भी जानवर के लिए जो सर्वाधिक सुलभ भोजन होगा वह उसकी तरफ आकृष्ट होगा। जंगल के इलाके में जब बंदरों के खाने की कमी होती है तो वो खेत और बस्ती की तरफ आते हैं। सूखा और अकाल के कारण जो ताजा हालात बने हैं उसमें बंदर अब अगर धान खाने लगे हैं तो इसे बंदरों के स्वभाव में आए एक परिवर्तन की तरफ देखा जाना चाहिए।
अचानक मार वन परिक्षेत्र के रेंजर उत्तम बघेल भी बंदरों के व्यवहार में आए परिवर्तन से हैरान है।
अकाल की वहाँ स्थिति है अल्प वर्षा के कारण। पहले चीतल और सुअर आया, जंगली सुअर आया करते थे, और आजकल जो है लाल मुंह वाले बंदर भी जो है धान को खाना शुरू कर दिए हैं। उनको जो है ज़्यादा जो है स्वादिष्ट लग रहा है जो धान है जंगली फल फूलों की अपेक्षा।
मूल रूप से बंदरों पर शोध करने वाले वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबल सरकार का कहना है कि धान की फसल को अगर बंदर निशाना बना रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जंगल में इस बार उनके लिए भोजन की कमी हो गई है।
जंगल में एक डिसएडवांटेज फूड जो है खाना, फूड मटेरियल एक जगह में नहीं होता, इधर उधर होता है तो ढूंढने में काफी टाइम एंड एनर्जी खर्चा होता है। तो ऑटोमेटिकली जो मंकी होता है ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास में रहता है तभी जब फॉरेस्ट में फूड मटेरियल कम होता है। इसका ये सिम्टम है कि जंगल में फूड मटेरियल कम हो रहा है मंकी के लिए। एक बार अगर टेस्ट कर लिया धान का तो वो अगले साल इससे भी ज्यादा वो डैमेज करेगा।
किसान नेता आनंद मिश्रा का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने अब बंदरों के रूप में एक नया संकट पैदा हो गया है।
छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि दलहन और तिलहन की फसल वो बंदरों के कारण नहीं ले पा रहे हैं, और किसी तरह धान की फसल बच जाती थी क्योंकि बंदर अभी तक धान की फसल नहीं खाता था, पर अभी धान भी खाना शुरू कर देगा। बंदर तो सभी मैदानी इलाकों में हैं, तो ये किसानों के लिए एक नया संकट पैदा होने वाला है।
धान की 24,000 से भी अधिक प्रजातियों वाले छत्तीसगढ़ में अब धान के किसानों को मौसम की मार के अलावा बंदरों से भी जूझना पड़ेगा। जाहिर है धान के महंगे बीज, खाद और कीटनाशक के बाद अब बंदरों से जूझने की नई चुनौती का सामना आसान नहीं होगा।
ये थी आलोक पुतुल की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ से, और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है। आदेश मेरे सामने बैठे हुए हैं, बताएं।
जी रेहान, शारजा में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान ने आज इंग्लैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 146 रन बनाए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 306 रन पर समाप्त हुई और उसे 72 रनों की बढ़त हासिल हुई। अब पाकिस्तान के पास 74 रनों की बढ़त है, लेकिन आज का खेल समाप्त होने के बाद पाकिस्तान के शोएब मलिक ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने 34 टेस्ट मैचों में 3 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 1,860 रन बनाए, और कमाल की बात यह है कि इसी इंग्लैंड टीम के खिलाफ उन्होंने पहले टेस्ट मैच में अपने जीवन का सर्वाधिक स्कोर 245 रन बनाया था। शोएब मलिक का ये मानना है कि वो 2019 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां अच्छी तरह से कर सकेंगे। और उधर टेनिस की कोर्ट पर पेरिस मास्टर्स में भारत के लिंडर पेस और स्पेन के रफेल नडाल जोड़ी बनाकर खेल रहे हैं। आज पहले दौर में उनका सामना इंग्लैंड के डोमिनिक एग्लॉट और स्वीडन के रॉबर्ट लिस्टेट से होगा। इस मुकाबले पर सबकी नज़र है। और उधर मोहाली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जहाँ भारतीय टीम के टेक्निकल डायरेक्टर रवि शास्त्री ने संकेत दिए हैं कि शायद स्पिन के मददगार विकेट मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश, और अब चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 9 जिलों की 57 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अंतिम चरण में 5 नवंबर को मतदान होना है। दिल्ली की 30,000 कोटी उबर टैक्सी में हुए बलात्कार के दोषी शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तुर्की की सेना ने कहा है कि उत्तरी इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की में कुर्द समर्थित पार्टी पीकेके के लड़ाकों पर हमले किए गए हैं। इसराइल की सेना ने पश्चिमी तट में एक फलस्तीनी रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया है। सेना का कहना है कि रेडियो स्टेशन हिंसा भड़का रहा था। बीबीसी समाचार।
दिन भर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।